SBS हिंदी पर गौरव वैष्णव के साथ सुनिए 11 अगस्त शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। विक्टोरिया में कोरोना संक्रमण से लगातार दूसरे दिन 19 मौत। भारत के राजस्थान में सियासी संकट हुआ खत्म। सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी और अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर चली गोली। राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। और अब समाचार विस्तार से। विक्टोरिया में कोविड संक्रमण ने 19 लोगों की जान ले ली है, जबकि पिछले 24 घंटों में 331 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जबकि 24 घंटों में रिकॉर्ड 19 लोगों की मौत हुई है। इन 19 में से 14 मौत एज्ड केयर से संबंधित है। मौजूदा वक्त में 650 कोरोना संक्रमित लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 47 लोग आईसीयू में हैं और इनमें से 24 वेंटिलेटर पर हैं। प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज ने कहा है कि वो मानते हैं कि चौथे चरण के प्रतिबंधों से विक्टोरिया के कई लोग निराश हैं, लेकिन प्राथमिक संकेत मिल रहे हैं कि इन कड़े उपायों से संक्रमण के मामलों को कम करने की ओर बढ़ा जा सकता है।
All of our experts remain convinced and very confident that as we just into the early parts of the second week, not even yet a full week of many of the stage four, the most significant changes. We will continue to see data that forms a trend, and we'll continue to see numbers coming down. Exactly how long this takes and to what the lowest number we can get to, that's only time will tell.
New South Wales में पिछले 4 महीनों के दौरान एक दिन में COVID-19 के सबसे ज्यादा 22 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 4 लोग विदेशों में वापसी करने वाले लोग हैं जो कि होटल एकांतवास में हैं, जबकि एक शख्स विक्टोरिया में संक्रमित हुआ था। 8 अन्य मामलों को उत्तरी सिडनी के चेरी ब्रुक में टंगारा गर्ल्स हाईस्कूल से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही यहां से फैलने वाला संक्रमण 17 लोगों तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रेड हेजार्ड ने कहा है कि राज्य प्रशासन को उम्मीद है कि आगे की जांच से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये मामले कहाँ से आए हैं।
Dr. Chant and other chief health officers have made the point around the country time and time again that it's always more comforting to know what the source was. But if you don't know the source, then we all have to be on high alert. And that's why, as has been said many times, the community, every one of us should treat everybody else as if we have COVID and they have COVID.
New South Wales की प्रीमियर ग्लेडीज बेरेजैकलिन ने विक्टोरिया से अपने घर कैनबरा जाने वाले लोगों को अपने राज्य में प्रवेश से रोकने के मामले पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा काफी बड़ा है। विक्टोरिया में रहने वाले ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के निवासी अब न्यू साउथ वेल्स के रास्ते अपने घर नहीं जा पाएंगे। पिछले हफ्ते यात्रा नियमों में बदलाव के बाद उन्हें अब फ्लाइट के जरिए ही जाना होगा। मुख्यमंत्री एंड्रयू बार ने एक समाधान प्रस्ताव में कहा था कि ट्रेवल एस्कॉर्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कार से कैनबरा जाने वाले लोग रास्ते में कहीं नहीं रुकें। लेकिन सुश्री बेरेजैकलिन ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता राज्य के निवासियों को कोरोना के प्रकोप से बचाना है।
I don't think anyone would begrudge us for being cautious when people from a highly infectious area, highly infectious state, are trying to make their way through New South Wales. I think that's entirely appropriate for us to consider all those issues. I do understand health and police and other authorities are getting to a place where that issue can be resolved, but I can't apologise for putting safety first in New South Wales, and I won't.
केंद्रीय एस्ट केयर मंत्री रिचर्ड कोलब्लैक ने उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि एस्ट केयर सेक्टर को कोरोना महामारी को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त सलाह नहीं दी गई थी। उनका यह बयान एस्ट केयर रॉयल कमीशन द्वारा सोमवार को सुने गए एक मामले के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि एस्ट केयर सेक्टर में कोरोना से लड़ने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं तैयार किया गया था, बावजूद इसके कि यहां रहने वाले लोग इस लिहाज से काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। लेकिन श्री कोलबैक का तर्क है कि जनवरी के बाद से इस सेक्टर को लगातार सहायता दी जा रही है और जुलाई में एक राष्ट्रीय समिति ने भी सलाह जारी की थी। नेता विपक्ष एंथनी एल्बनीजी ने कहा है कि इस महामारी से पहले भी एस्ट केयर सेक्टर में हालात ठीक नहीं थे।
We need to honor and respect our older Australians who've helped build the country. We need to treat them with dignity. And we need to do much better when it comes to aged care across the board.
अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये गोलीबारी हुई, उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस वार्ता कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं घटना की जानकारी पत्रकारों को दी। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने तुरंत ही कार्रवाई की, जिससे फायरिंग करने वाले को नियंत्रण में ले लिया गया है।
It's unfortunate that this is a world, but the world's always been a dangerous place. It's not something that's unique. The world has been, you look back over the centuries, the world has been a dangerous place, very dangerous place, and it will continue, I guess, for a period of time.
और अब खबरें भारत से। राजस्थान के राजनीतिक संकट का अंत नाटकीय तरीके से हुआ है। बागी कांग्रेसी नेता सचिन पायलट की उनकी समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस में वापसी हो गई है। दरअसल ये सोमवार को सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद संभव हुआ। इस सुलह के बाद पायलट ने मीडिया को बताया कि उनकी शिकायतों को सुनने और उनके निराकरण के लिए कांग्रेस ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये 3 सदस्य प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल हैं। पायलट ने उम्मीद जताई है कि उनकी समस्याओं का निराकरण होगा।
जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थी या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत जरूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सबकी बातों को, उन सबके कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है, मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात का, कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं।
उधर पायलट की वापसी से कांग्रेस में खुशी का माहौल है। पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया है। शशि थरूर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को उनके बेहतरीन टैलेंट को पार्टी में बनाए रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के मुद्दे राजस्थान प्रदेश पर आधारित हैं, जिनका समाधान किया जाएगा।
His was a specific problem in a specific set of circumstances and not, I think, a kind of denunciation of the Congress party. So the Congress party has every reason to keep its brightest talents within it. And you may, many of you will remember that I actually tweeted when the crisis first broke out that I would be very sad to see the Congress lose someone like Sachin, that he is one of our best and brightest and he should stay with us.
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र और बिहार की राजनीतिक पार्टियां लगातार उलझती जा रही हैं। शिवसेना नेता संजय राउत इस मामले पर पिछले कुछ दिनों से लगातार मुखर हैं। रविवार को उन्होंने दावा किया था कि सुशांत के अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उन्होंने पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा था कि सुशांत को अपने पिता की दूसरी शादी स्वीकार्य नहीं थी। अब उन्होंने एक बार फिर इस मामले में बिहार सरकार की भूमिका पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी को मुंबई पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए।
मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा ही है ना। ये सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला मुंबई में चल रहा है, FIR मुंबई में दर्ज हुई है, जांच मुंबई पुलिस कर रही है, जांच अब तक खत्म नहीं हो रही है और अब अचानक बिहार में FIR करते हो, क्या जरूरत क्या है? विश्वास रखो पुलिस के ऊपर। पुलिस पुलिस होती है, चाहे बिहार की हो, चाहे मुंबई की हो, या चाहे और किस राज्य की हो, और हर पुलिस का अपने स्टेट में एक रुतबा होता है, एक स्वाभिमान होता है। आप उसमें अगर टांग अड़ाएंगे तो जरूर बात बिगड़ जाती है।
संजय राउत के बयानों पर अब महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा है कि शिवसेना के सांसद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में ओछी बातें कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हर परिवार की अपनी कहानी होती है, शिवसेना वालों की भी बहुत कहानियां हैं। वो लिखते हैं कि शिवसेना को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। भारत में कोरोना के मामलों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 53,601 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब तक सामने आए कुल संक्रमण के मामलों की संख्या 22,68,675 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 871 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 45,257 पहुँच गया है। हालांकि रिकवरी रेट भी बढ़कर 69.89% पहुँच गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दिल्ली के सैनिक अस्पताल R&R में वेंटिलेटर पर हैं। रक्त का थक्का हटाने के लिए उनके मस्तिष्क का सफल ऑपरेशन किया गया है। इसके साथ ही उन्हें कोरोना संक्रमित भी पाया गया है। सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट के जरिए खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि वो किसी दूसरे कारण से अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन जांच में उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उधर शायर राहत इंदौरी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंगलवार को उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने के बाद मेरा टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.49 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 71 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। अमेरिका की 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम्स 6 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर टेनिस खेलने के लिए तैयार हैं। खबरों के मुताबिक वो लेक्सिंगटन के नज़दीक टॉप सीड ओपन में भाग ले रही हैं। माना जा रहा है कि ये प्रतियोगिता इसी महीने न्यूयॉर्क में होने जा रहे US ओपन की तैयारी का काम करेगा। हालांकि इस आयोजन में दर्शकों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। कोरोना वायरस के कारण सत्र के शुरू में देरी होने के बाद फार्मूला 1 को अनिवार्य तौर पर बंद रखने की समय सीमा को 2 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। विश्व मोटर स्पोर्ट्स संचालन संस्था FIA ने इसकी पुष्टि की है। FIA ने पहले इसके 21 दिन के लिए बंद रखा था, लेकिन अब ये 35 दिन तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कारों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा। FIA ने बयान में कहा है कि इस फैसले को F1 के सभी हितधारकों ने सर्वसम्मति से मंजूर किया है। और अब डालते हैं नजर कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में बुधवार को बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में भी बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में सुबह के वक्त तेज बारिश के बाद रुक रुक कर बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में छिटपुट बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में भी बादलों की आवाजाही रह सकती है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में भी धूप रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। समाचारों में आज इतना ही।